समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज की सुबह बेहद खास है, आज महालया है। आज से ही शुरू हो रहा है शक्ति की आराधना का महापर्व दुर्गा पूजा। आज हम उस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं जो बुराई का नाश करती है। आज ही पितृ पक्ष का समापन होता है और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, बुराई अपनी जड़ें कितनी ही गहरी क्यों न जमा लें, अंततः जीत सत्य की ही होती है।
Yes, listeners, माँ आश्चर्य। Mahalaya is being observed today. Today it's 21st September and it is considered as the symbolic beginning of the Durga Puja festival and also the last day of Pitru Paksh. Well, in West Bengal, Mahalaya Amavasya, it marks the beginning of Navratri festivity. It is believed that Goddess Durga was descended on the earth on this day. Well, families across Bengal, they gather just before dawn at 4 a.m. to listen to the Mahishasura Mardini recital. Well, a ritual, this has been carried for nearly a century. So the spiritual recital, it narrates the victory of Goddess Durga over the demon Mahishasura. The phrase Mahishasura Mardini, it means the one who destroyed the demon Mahishasura. It is a celebration of the feminine power and the divine Shakti. Shubho Mahalaya.
Ashirer sharad prate beje utheche alokomanjit dharonir bahirakashe antarito meghamala prakritir antarakashe jagrito jyotirmayi jaganmatar agamanvarta।
इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Akarshita, Namaskar all our listeners, a very warm welcome. Well, this is our daily news magazine program, Aaj Savere, and today me and Akarshita are here to provide you the latest national and international news first, then Metro City updates, and today we'll also be exploring the history which is related to today's date. Today it's 21st of September, as I told you. First, let's begin with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन विदेशों पर उसकी निर्भरता है और देश को इससे बाहर निकलना होगा। कल गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर जहाजों तक सभी क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन के महत्व का उल्लेख किया।
देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते, हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते, और इसलिए भाइयों बहनों, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा।
श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने भारत के खड़ा होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने के अपनी सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाना है।
Defense Minister Rajnath Singh will be on an official visit to Morocco beginning today. This will mark the first ever visit of a Raksha Mantri to the North African nation, highlighting the growing strategic convergence between India and Morocco. In a social media post, Mr. Singh said, during the visit, Mr. Singh will hold a bilateral meeting with his Moroccan counterpart, Abdeltaif Ludiei, to strengthen defence, strategic and industry cooperation. He will also attend the inauguration of Tata Advanced Systems Maroc's new manufacturing facility for the wheeled armoured platform at Barshid. This facility is the first ever Indian defence manufacturing plant in Africa, which marks an important milestone that reflects the growing global footprint of India's defence industry under the Atmanirbhar Bharat initiative.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में कर व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो सके। नई दरें कल से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर जीएसटी सुधार के संभावित प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं।
सरकार ने जीएसटी सुधारों के अंतर्गत वाहनों की खरीद पर उल्लेखनीय कमी कर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। दोपहिया वाहन और छोटे कारों पर कर की दरों को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। बड़ी कारों पर भी अब अतिरिक्त कर को पूरी तरह से हटाकर जीएसटी को 40% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से बड़ी कारों पर लगने वाली प्रभावी कर कम हो जाएगी, जिससे लोगों के लिए कारें खरीदना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा और ऑटो सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी में कटौती से पुराने वाहनों को नई वाहनों से बदलने में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत स्वच्छ परिवहन की तरफ अग्रसर होगा। जीएसटी कर में सुधार पर अपनी राय जाहिर करते हुए एक कार खरीददार सैयद ने सरकार के फैसले का स्वागत किया।
गाड़ियों पे लेस देन 300 सीसी का जो भी है, गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किया है 28% से 18% को, सो ये 10% का डिफरेंट, इट इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो ये डेफिनेटली अगर किसी को ये करेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो वो मिडिल क्लास फैमिली रहेगी, बिकॉज 10% टैक्स बचना, इट्स लाइक अ ह्यूज डिफरेंस।
नई जीएसटी दरों से वाहनों की कीमतें कम होंगी। युवाओं के साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अब वाहन खरीदना और भी आसान हो जाएगा। सौम्या शरण के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की अनुशंसा पर सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मलयालम अभिनेता को ये पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। 23 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले मलयालम अभिनेता मोहनलाल को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री मोहनलाल उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के अभिनेता हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से अपनी समृद्ध शारीरिक गतिविधियों के जरिए मोहनलाल मलयालम सिनेमा और थिएटर के एक अग्रणी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। वे केरल की संस्कृति को लेकर अत्यधिक भावुक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि श्री मोहनलाल की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।
लिसनर्स, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चलो जीते हैं इज बीइंग स्क्रीन्ड नेशन वाइड अक्रॉस लैक्स ऑफ स्कूल्स इन नियरली 500 सिनेमा हॉल्स टू मार्क द 75th बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट इज इंस्पायर्ड बाय अ चाइल्डहुड इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय नरू हु इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद फिलोसफी एंड स्ट्राइव्स टू मेक अ डिफरेंस इन अ स्मॉल वर्ल्ड। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
चलो जीते हैं, रिलीज्ड इन 2018, वाज अमंग्स द मोस्ट वॉच शॉर्ट फिल्म्स ऑफ दैट ईयर। डायरेक्टेड बाय मंगेश हडावले एंड प्रेजेंटेड बाय आनंद एल राय एंड महावीर जैन, द फिल्म रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज इन 2019। स्पीकिंग टू आकाशवाणी न्यूज आफ्टर अटेंडिंग अ स्क्रीनिंग ऑफ चलो जीते हैं इन न्यू दिल्ली, गौरव सियाल सेड दैट द हर्ट टचिंग मूवी डिपिक्टेड द ट्रूथ ऑफ मिस्टर मोदीज लाइफ। ही ऑल्सो एडेड दैट ही गॉट हाईली इंस्पायर्ड बाय द फिल्म।
मूवी जो है ये चलो जीते हैं, ये एक बहुत अच्छी मूवी है। काल्पनिक काल्पनिक नहीं है, ये मूवी एक असल में जिंदगी को देखकर बनाया गया। वो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैं इस मूवी से ये सीखता हूँ कि मुझे जो भी मैंने इस मूवी में देखा है वो मैं अपने जीवन में इसको उतारूंगा।
अनदर व्यूअर नंद किशोर सेड दैट द फिल्म कन्वेज द मैसेज दैट वन शुड लिव विद द गोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड मेकिंग सैक्रिफाइसेस फॉर अदर्स।
ये मूवी देखकर ऐसा लगा कि जैसे मन में आता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए, किसी के लिए कुर्बानी करना, किसी को उठाना एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज डिस्क्राइब्ड द फिल्म एज अ सिनेमेटिक ट्रिब्यूट टू द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इट्स स्पेशल री रिलीज कमेंस्ड ऑन द 17th ऑफ दिस मंथ एंड विल कंटिन्यू अंटिल द 2nd ऑफ अक्टूबर। विद समर्थ सौम्य शरण फॉर आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
Guided by the mantra of Seva and Sushasan, the government under Prime Minister Narendra Modi has been working tirelessly to bring about transformation and progress. Today, in this special series, Seva Parv, we bring you an overview of how the Narendra Modi government has provided tax relief and assured pensions.
Over the past 11 years, the government has gone beyond token measures to make a real difference in the lives of the middle class. From lowering income tax rates to simplifying returns, every move has been aligned with the core idea of letting citizens keep more of what they earn. The most recent tax reforms, especially those in the Union Budget 2025-26, are a clear sign that the government has placed its trust in the middle class as a pillar of national growth. Another major decision was that individuals earning up to 12 lakh rupees annually will have to pay no income tax except on special incomes like capital gains. In his video message after the presentation of the Union Budget, Prime Minister Narendra Modi had said that the government is ensuring tax relief for poor and middle class.
NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है।
To make tax compliance easier, individual taxpayers are now provided with pre-filled income tax returns. In another major step to strengthen social security for government employees and their families, the Union Cabinet approved the Unified Pension Scheme in August last year. The scheme ensures an assured pension of 50% of the average basic pay drawn during the last 12 months before retirement, applicable to employees with at least 25 years of service. The scheme is expected to benefit around 23 lakh central government employees. From tax relief that leaves more money in their hands to pension schemes that promise security in old age, the last 11 years have seen a steady and sincere effort to make life easier, fairer and more dignified for millions.
The White House has issued a major clarification regarding United States' new H-1B visa policy that caused confusion and panic in the tech industry, saying that $100,000 fee will be a one-time payment imposed only on new applicants. White House Press Secretary Caroline Levitt issued a clarification yesterday, hours before the new policy is set to come into effect today.
दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर फोर के दूसरे मुकाबले में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान पर 7 विकेट से हराया था। भारतीय टीम अपने सभी लीग मुकाबले जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सुपर फोर में प्रवेश कर लिया था। कल सुपर फोर के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया।
जी नाउ इन बैडमिंटन, Indian pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face top seeds world champions Kim Won Ho and Seo Sung Jae of South Korea in men's doubles final of China Masters at Shenzhen in China today.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें।
First, we'll begin with Chennai. The Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University tested 55 rats and detected a parasite worm in more than 38% of them using a highly sensitive molecular diagnostic tool. The author of the study said that this was the first study to provide molecular confirmation of C. hepaticum in rats. The parasite lives inside the rat liver and produces eggs that remain trapped there. And unlike many other worms, the C. hepaticum's eggs are not shed in rat droppings.
और अब खबरें दिल्ली से. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कर्मपुरा स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद भवन का भव्य उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को देश और विदेश के छात्रों के लिए शिक्षा का हब बनाना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है. इस अवसर पर सांसद बासुरी स्वराज, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और विधायक हरीश खुराना भी उपस्थित रहे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल नजफगढ़ के नंगली डेयरी क्षेत्र में 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन गोबर पर आधारित बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण किया. इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस बायोगैस संयंत्र से देश की ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति और भाषा विभाग तथा पंजाबी अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कल सरब धर्म सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के ICAR कन्वेंशन सेंटर पूसा कैंपस में किया गया. इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के संत आचार्यों ने मंच साझा किए और गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान को याद करते हुए मानवता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया.
Focusing now on Bengaluru, Karnataka Energy Minister K.J. George inaugurated skills training program in his assembly constituency in Sarvagnanagar in Bengaluru yesterday. Under the program, 3 to 6 months training is imparted in computer operation, tailoring and handicraft making. A foundation providing the skills training, it will help the trained to take up self-employment. Also, speaking on the occasion, he stressed that his focus will be to provide basic infrastructure in the constituency.
और अब खबरें मुंबई से. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना जरूरी है. वे कल भारतीय पुलिस फाउंडेशन के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे. इस कार्यक्रम का विषय था भारत के आर्थिक विकास के लिए पुलिस बल की पुनर्कल्पना. वहीं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि राज्य के आदिवासी किसान जल्द ही अपनी बंजर जमीन निजी संस्थाओं को पट्टे पर दे सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो सकेगी और इस संबंध में एक कानून लाया जाएगा.
Now, let's head to Hyderabad. Following Election Commission of India directions, ECI's directions, Telangana Chief Electoral Officer C. Sudarshan Reddy has said 9 registered unrecognized political parties from the state, they had been delisted from failing to comply with statutory norms. Let me name two of them, Lok Satta Party, All India Azad Congress Party and others as well. These parties, they remained unrecognized and did not meet the mandatory compliance requirements under the Representation of the People Act 1951.
और अब खबरें कोलकाता से. पश्चिम बंगाल में महालया के दिन आज हिंदू अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहे हैं. इस दिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो रहा है और इसी दिन से देवी पक्ष भी शुरू हो जाएगा. आकाशवाणी कोलकाता से आज सुबह 4 बजे प्रसारित होने वाली महाकाव्य रचना महिषासुर मर्दिनी का प्रसारण किया गया. कोलकाता में गंगा नदी के घाटों पर सभी आवश्यक उपाय किए गए और अन्य जिलों में नदी घाटों पर भी उपाय किए गए हैं. और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल. सबसे पहले दिल्ली का मौसम. आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं. वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. एक दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं कोलकाता में बारिश के साथ आंधी की संभावना है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है.
Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 28 degrees. If I talk about Hyderabad, it is again expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain. The temperature will hover between minimum of 22 degrees and maximum of 30 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ.
जी, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट The International Day of Peace, also known as World Peace Day, is celebrated every year. Today, first established by the United Nations in 1981, and this day, it is a reminder that peace is not just the absence of war, it means safety, respect and kindness in our daily lives.
इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना, इसे युद्ध और हिंसा के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन शांति की भावना को फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और इसके माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जाती है।
And listeners, Kashita, let's also tell them today World Alzheimer's Day. It is observed each year today, and this is especially to raise awareness about Alzheimer's disease and other forms of dementia. Well, it is a progressive brain disorder that gradually impairs memory, also thinking and daily functioning, and it is a leading cause of dementia affecting millions of people worldwide.
और ऐसे कुछ खास उपाय जिनसे हम इससे दूर रह सकते हैं या इससे थोड़ा बचाव हो सकता है, वो है कि आप वॉक कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, प्रतिदिन 30 मिनट तक आधे घंटे योग कर सकते हैं, इससे इसमें काफी सुधार आएगा।
यस, राइटली सेड आकर्षिता। ऑल्सो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और अ न्यू इंस्ट्रूमेंट और क्रॉसवर्ड्स और इवन सॉफ्टवेयर, इट इंक्रीजेस न्यूरल लिंक्स एंड योर डाइट, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर ब्रेन हेल्थ। सो हैव अ गुड डाइट विच शुड इंक्लूड लीफी ग्रीन्स, नट्स, फैटी फिश।
और 7 से 8 घंटे की स्लीप भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है अल्जाइमर्स के पेशेंट के लिए।
राइटली सेड आकर्षिता।
और आइए अब बात करते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। आइए चलते हैं पीछे की तरफ। आज के दिन ही 1677 में नीदरलैंड के जॉन और निकोलस वॉन डर हेडन को अग्निशामक यंत्र के लिए पेटेंट मिला था।
In 1968, Research and Analysis Wing, RAW, was established. In 1971, Bahrain, Bhutan and Qatar, they joined the United Nations. And in 1974, Malta got independence today.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
आज आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता रामानुज प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि है। ये उनकी ही आवाज थी। सन 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह ने लंबे समय तक आकाशवाणी पर खबरें पढ़ने का कार्य किया। सुबह, दोपहर और शाम के प्राइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। वे कवि और साहित्य कुलगुरु रामधारी सिंह दिनकर के भतीजे भी थे।
Well, what a voice. I should definitely add that there, Akarshita. Listeners, today we are also remembering Tarachand Parjatya. Well, the film producer produced many Hindi films from the 1960s through to the 1980s, and he founded Rajshri Productions, which continues to produce films, well, even today. So, I have specifically created a song, like two songs are there, not just one song, because I have to choose two songs here. Let's listen in, listeners.
जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ।
आज भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की पुण्यतिथि है। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत मिमिक्री से की थी, जहां वे अलग अलग थिएटर में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के साथ साथ टीवी के हास्य कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोटे पर्दे पर आए हास्य कार्यक्रम लॉफ्टर चैलेंज ने राजू श्रीवास्तव को घर घर में पहचान दिला दी थी।
जी।
राजू श्रीवास्तव मुख्यतः आम आदमी और रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर व्यंग सुनाने के लिए भी जाने जाते थे। आइए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं उनका ये हास्य व्यंग।
दिल्ली और जयपुर की फ्लाइट बहुत छोटी फ्लाइट है, 30 मिनट की फ्लाइट है दिल्ली जयपुर, वहां भी अनाउंसमेंट करेंगे। अगर प्लेन को अगर मजूरी में पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखे हुए, रक्षा जैकेट को ऐसे निकाल लें, ऐसे गले में डाल दें, ऐसे फुला लें। मैंने कहा मैडम यहाँ आपको दिल्ली जयपुर में समुंदर कहाँ मिल रहा है, क्या किसी की बाल्टी में उतारोगे? अच्छा मुझे वो करेक्टर मिल भी जाते हैं कॉमेडी वाले, पता नहीं मेरे सर पे वो पैसेंजर आ भी जाते हैं जिनसे मुझे ह्यूमर मिलता है। एक मुझसे कह रहे हैं अरे राजू भाई हमें विंडो पे जाने की विंडो। हमने कहा आपको बादल वगैरह देखना है? नहीं, खिड़की से थूकना है।
Cracked our listeners up. Well, listeners, today we are also remembering Raymond Boz Burrow, the musician and originally a vocalist and guitarist. He's best known for being the vocalist and also a bassist for King Crimson. The song that I have chosen is wonderful to listen to, listeners. This is I Shall Be Released.
आज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, संगीतकार, भक्ति संगीत तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान जितेंद्र अभिषेकी की जयंती है। उन्हें मराठी संगीत के उद्घारकर्ता के रूप में जाना जाता है। संस्कृत साहित्य में डिग्री प्राप्त करने के बाद जितेंद्र अभिषेकी एक संक्षिप्त अवधि के लिए ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में शामिल हो गए, जहां वे कई संगीतकारों के साथ संपर्क में आए। उन्हें रेडियो कार्यक्रमों के लिए अपनी रचनाओं द्वारा अपनी संगीत प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिला। उस्ताद अजमत हुसैन खां के सानिध्य में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। जितेंद्र अभिषेकी ने ख्याल गायन की एक विशिष्ट शैली विकसित की, जिसे आज अभिषेकी घराने के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं उनका ये शास्त्रीय वादन।
उधली तरंग अबीर गुलाल उधली तरंग रंग रंग अबीर गुलाल उधली तरंग नाथा घरी नाचे माधा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माधा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माधा सखा पांडुरंग।
लिसनर्स, today we are also remembering H.G. Wells. Well, the writer, prolific in many genres, he wrote more than 50 novels and dozens of short stories. His non-fiction output included works of social commentary, politics, history, popular science, satire, biography and also autobiography. Listeners, today we are also remembering Jaco Pastorius. Well, the bassist and composer and also a producer, widely regarded as one of the greatest and most influential bassists of all time. This is a beautiful song, the instrumental piece also, Liberty City. Let's listen into that, listeners.
आज हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अजरा का जन्मदिन है। अभिनेत्री अजरा को फिल्म मदर इंडिया, गंगा जमुना और जंगली के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मदर इंडिया से ये गीत।
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम
Listeners, today it's also birthday of Dickie Lee. Well, the pop country singer and songwriter, he's best known for his 1960s tragedy songs Laurie and also Patches. But I have chosen Patches for you to listen to, listeners.
Down by the river that flows by the coal yards stand wooden houses with shutters torn down, there lives a
और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षता और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
ऑल्सो थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार।